अथ मित्रलाभ प्रस्ताव अथ प्रासाद पृष्ठे सुखोपविष्टानां राजपुत्राणां पुरुषत्तात् प्रस्ताव कर्मेण स पंडितो ब्रवीत भो राजपुत्र शुणुत। राजपुत्रों के सुपुत्र करने के बाद राजमहल के ऊपर छत पर सुखपूर्वक बैठे हुए राजपुत्रों के सामने अवसर देखकर विष्णु शर्मा पंडित ने कहा, हे राजपुत्रों सुनो, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमिताम वयसेन च मूर्खानां निद्रया कलहेन वा। श्लोक संख्या 1। बुद्धिमान लोग अपने जीवन समय को नीति शास्त्रादि में बिताकर सार्थक करते हैं और मूर्ख लोग तो जुआ खेलना आदि व्यसनों में या तो क्लेश टंटा में अपने जीवन को बर्बाद करते हैं। इसलिए अपने को नीति शास्त्र के चिंतन में विनोद करना चाहिए। तद्भवताम विनोदाय काककुर्मादीनां विचित्रां कथां कथयिष्यामि। राजपुत्रे रुक्तम आर्य कथयताम। विष्णु शर्मोवाच, श्रोत जुजम संप्रति मित्रलाभ प्रस्तूयते यस्याय माद्यः श्लोकः। धीमान पुरुषों का समय शास्त्र विनोद से ही व्यतीत होना चाहिए। इसलिए आपके विनोद के लिए मैं काककुर्म आदि की विचित्र मनोरंजक कथाएं कहूँगा। तब राजपुत्रों ने कहा, आर्य कहिए। उसके बाद विष्णु शर्मा जी ने कहा, आप लोग सुनिए। इस समय मित्रलाभ नाम की कथा आरंभ करता हूँ, जिसका यह पहला श्लोक है। असाधना वित्तहीना बुद्धिमंत सुहृत्तमा साध्यंतांशु कार्याणि काककुर्म मृगा खुवत। श्लोक संख्या 2। जैसे काककुर्म हरण चूहा इन चारों के पास कोई साधन तथा धन नहीं था, तो भी अपनी बुद्धिमता के साथ साथ मित्रता से एकमत होकर असाध्य कार्य को भी सिद्ध किया, वैसे अस्त्र शस्त्रादि साधन तथा धन रहित भी बुद्धिमान मित्रगण मिलकर असाध्य कार्य को सिद्ध कर सकते हैं। राजपुत्रा उचुहु कथमेतत् सोब्रवीत्। अस्ति गोदावरी तीरे विशाल शालमली तरुह तत्र नाना दिग्देशादागत्य रात्रो पक्षिणो निवसन्ति। अथ कदाचित् अवसन्नायाम् रात्रो अस्ताचल चूड़ावलंबिनी भगवती कुमुदिनी नायके चंद्रमसी लघुपंतक नामा वायसा प्रबुद्धा कृतांतमेव द्वितीयम टंटः पाशहस्तं व्याघ्रम् अपयशत। तम आलोक्या चिंतयत् अद्य पातरेवा नृष्ट दर्शनम जातम न जाने किम अनभिमतम दर्शयस्यति इत्युक्ता तदनुसरण कर्मेण व्याकुलश्चलितः। तब राजपुत्रों ने कहा, असाध्य कार्य को भी सिद्ध करने में काककच्छपादि का दृष्टांत बताया, सो किस प्रकार है? विष्णु शर्मा ने कहा, अर्थात कथा शुरू की। गोदावरी नाम की नदी के किनारे पर एक विशाल सेमल का वृक्ष है। उस वृक्ष पर चारों तरफ से बहुत से पक्षीगण देश देशांतरों से आकर रात्रि बिताते थे। एक बार प्रातः काल हुआ और भगवान कुमुदिनी नायक चंद्रमा अस्त हो गए। तब एक लघुपतनक नाम काक ने जागते ही यम के सदृश और हाथ में जाल लेके घूमते हुए एक व्याघ को देखा। व्याघ को देखकर काक सोचने लगा, आज प्रातः काल में ही अमांगलिक अर्थात अशुभ सूचक दर्शन हुआ, न मालूम यह किस प्रकार का अनिष्ट करेगा। इतना कहकर उस व्याघ के पीछे पीछे वह काक व्याकुल होकर चल दिया। यतः शोक स्थान सस्तानी भयस्थान सतानी च दिवसे दिवसे मूलमाविशन्ति न पंडितम। श्लोक संख्या 3। मूर्ख जन अपने स्वभाव से ही नित्य प्रति शोक और भय के कारणों को उत्पन्न करता है, न कि विद्वान, क्योंकि विद्वान जन अपनी निपुणता से ही शोक के कारणों को भी शुभप्रद बना देते हैं। इसलिए काक भी अपनी बुद्धि अनुसार आने वाला दुख न आने पावे ऐसा प्रयास करने में प्रवृत्त हुआ। अन्यश्च विषयणी नामिदम अवश्यम कर्तव्यम उत्थायोत्थाय बोद्धव्यम महदभयम उपस्थितम मरण व्याघी शोका नाम किमद्ध निपत्तिष्यति। श्लोक संख्या 4। इस संसार में अपना संरक्षण चाहने वाले जनों का यह कर्तव्य है कि रोजाना प्रातः काल उठकर मरण या दुख अथवा शोक इन तीनों में से जो आज आने वाला हो उसका विचार करके तब उस महान भय को दूर करने के प्रयत्न में सावधान बने। अथ तेन व्याधेन तण्डुलकलान विक्रिय जालम विस्तीर्ण स च तत्र प्रच्छन्नो भूत्वा स्थिता अस्मिन्नेव काले चित्रगीवा नाम कपोत राजा सपरिवारो वियति। विसर्पेस्तास्त्र तण्डुलकणान् अवलोक्यमास तत्कपोत राजस तण्डुलकडलुब्धान् कपोतान् प्राह कुत्रोत्र निर्जने वने तण्डुलकणानां संभव तन्निरूप्यतां तावत् भद्रमिदं न पश्यामि प्रायणानेन तण्डुलकड़ लोभेनास्माभिरपि तथा भवितव्यम्। उसके बाद उस व्याघ ने चावल के कड़ों को पृथ्वी पर छीट कर ऊपर से जाल को फैला दिया और वह व्याघ पास के छोटे पेड़ों के निकट छिप कर बैठ गया। उस समय चित्रगीव नाम के कबूतरों के राजा ने अपने परिवार सहित आकाश में उड़ते उड़ते उन चावल के कड़ों को देख लिया। उसके बाद उन चावल के कड़ों को खाने के लिए लोभी कबूतरों से कपोतराज ने कहा, इस मनुष्य रहित जंगल में चावल के कड़ों का संभव कैसे हो सकता है, अर्थात नहीं हो सकता है। इसलिए प्रथम उस बात का विचार करिए, साहस करने से मैं कपोतराज अपना कल्याण नहीं देख रहा हूँ। इस चावल के कड़ों के लोभ से अपने को भी वैसा ही जैसा कि सिंह के कहने से एक यात्री को सोने के कंगन के लोभ से तालाब में कीचड़ में फंस कर मरना पड़ा, ऐसा होना पड़ेगा। कंकड़स्य तु लोभेन मग्ना पंके सुदुस्तरे वृद्ध व्याघेन संप्राप्त पथिका समृतो यथा। श्लोक संख्या 5। जैसे सोने के कड़े के लोभ से एक यात्री बाघ के कहने से तालाब में स्नान के लिए गया और वहाँ के गाढ़े कीचड़ में फंस गया, तब उस व्याघ ने उसे मार डाला, ऐसा अपने को भी मरना होगा। कपोता उचु कथमेत सो ब्रविता। कथा 1। अहमेकदा दक्षिणारण्ये चन्नपश्यम् एको वृद्धो व्याघः स्रातः कुचहस्ता सरस्तीरे ब्रूते भोभो पान्था इदं स्वर्ण कंकण गृहताम्। ततो लोभाकृष्टेन केनचित् पान्थेन अलोचितं भाग्येन एतत् संभवति किन्तु अस्मिन् आत्मसंदेहे प्रवृत्तन विधेया। कबूतर ने पूछा, व्याघ ने पथिक को मार डाला, वह कथा किस प्रकार है? तब चित्रगीव नाम का कबूतर कहने लगा, मैंने दक्षिण दिशा के दंडक वन में घूमते घूमते देखा है कि एक वृद्ध व्याघ स्नान करके हाथ में कूसा लेके तालाब के किनारे बैठकर बोलता था कि हे यात्री लोग, यह सोने का कड़ा ले लो। ऐसा सुनकर लोभ के अधीन होके एक यात्री ने सोचा कि भाग्य से सुवर्ण का कड़ा मिला है, लेकिन जान के खतरे वाले कार्य में साहस की प्रवृत्ति नहीं करनी चाहिए। यतः अनिष्टादिष्ट लाभेपि न गतिर जायते शुभा यत्रास्ते विष संसर्गो मृतम तदपि मृत्यवे। श्लोक संख्या 6। जैसे अमृत यद्यपि बहुत इष्ट वस्तु है, तो भी विष का संसर्ग होने से उसको त्याग देना चाहिए, वैसे ही अनिष्ट करने वाले प्राणी से अपनी इच्छित वस्तु को ग्रहण करने से भी आखिर में दुख होता है, इसलिए सोने का कड़ा भी त्याग देना चाहिए। किंतु सर्वत्रार्थार्जन प्रवित्तो संदेह एव तथा चोक्तम न संशयम मनारुह नरो भद्राणि पश्यन्ति संशयम पुनरारुह यदि जीवति पश्यति। श्लोक संख्या 7। धन के उपार्जन रूपी कठिन कार्य में सबको प्रथम मरण तथा आपत्ति का संदेह हो जाता है, लेकिन उस संदेह को दूर करके इष्ट की सिद्धि हो या तो मरण हो, ऐसा निश्चय करके ही कार्य करना चाहिए। ऐसा करने से ही इष्ट की सिद्धि होती है। तन्निरूप्यामि तावत् प्रकाशम ब्रूते कुत्र तव कंकनम व्याघो हस्तम प्रसार्य दर्शति पांथो वदत कथम मारात्मके तव्ये विश्वासः। स्वर्ण का कड़ा है कि नहीं, इस बात का प्रथम निश्चय कर लूं। ऐसा सोचकर वह यात्री बोला, तुम्हारा कंगन कहाँ है? यह सुनकर व्याघ ने अपना हाथ लंबा करके कंगन बताया। उसके बाद यात्री बोला, तू हिंसा करने वाला क्रूर प्राणी है, इसलिए मैं कैसे विश्वास करूं? व्याघ्र उवाच, रुरे पांथ प्रागेव यौवन दशायाम महम अतीव दुर्वित आसम अनेक गोमानुषानाम वधात मे पुत्रा मृता दारांश वंशहीनश्चाहम ततः केनचित् धार्मिकेनाहमुपदिष्टः दानधर्मादिकं चरतु भवान् इति तद्दुपदेशादिदानीमहं स्नानशीलो दातावृद्धो गलितनखदन्तः न कथं विश्वास भूमि। व्याघ्र ने कहा, अरे यात्रिन सुनो, युवा अवस्था में मैं बहुत हिंसामय कर्म करता था, बहुत से गौ और मनुष्यों को मारता था। उस पाप से मेरे पुत्र तथा स्त्री सब मर गए, मैं निर्वंश हो गया। उसके बाद कोई एक धार्मिक पुरुष ने मुझको उपदेश दिया है, तुम दान आदि धर्म करो। उसके उपदेश से इस वृद्धावस्था में नित्य त्रिकाल स्नान संध्या करने वाला और वृद्ध होने से मुख में दांतहीन हाथ में नखहीन ऐसा मैं व्याघ्र विश्वास का पात्र क्यों नहीं, अर्थात विश्वास पात्र ही हूँ। उक्तश्च इज्याध्यनन दानानि तपः सत्यम धृतिः क्षमा अलोभ इति मार्गोयम् धर्मस्याष्ट विधा स्मृतः। श्लोक संख्या 8। शास्त्रों में धर्म 8 प्रकार का कहा है, जैसे यज्ञ, वेदाध्ययन, दान, तप, सत्य, धीरज, क्षमा और अलोभ। इनमें से मैं दान करता हूँ, सत्य बोलता हूँ, लोभ नहीं करता, इसलिए मेरा विश्वास करो। तत्र पूर्वश्चतुर्वर्गो दम्भार्थमपि सेव्यते उत्तरस्तु चतुर्वर्गो महात्मनेव तिष्ठति। श्लोक संख्या 9। संसार में बहुत से लोग ख्याति, प्रतिष्ठा और यश के लिए याग, अध्ययन, दान और तप करते हैं, लेकिन सत्य, धीरज, क्षमा और अलोभ ये चार तो महापुरुषों के ही गुण हैं और अपने कल्याण के लिए ही उपयोगी हैं। अलोभ तथा सत्व गुण से मैं महात्मा हूँ, इसलिए मेरा विश्वास करो। मम चैतावान लोभ विरह येन सवहस्तस्थमपि स्वर्ण कंकणम यस्मे कस्मेचित् दातुमिच्छामि तथापि व्याघो मानुषम् खादति इति लोकापवादो दुर्निवारः। मैंने यहाँ तक लोभ का त्याग कर दिया है कि अपने हाथ का सोने का कंगन भी जिस किसी को देना चाहता हूँ तो भी व्याघ्र मनुष्यों को खा जाता है, ऐसा लोकापवाद मिटाने से नहीं मिटता। यतः गतानुगतिको लोको कुट्टन्योपदेशीनं प्रमाणयति नो धर्मे यथा गौधनमपि द्विजम्। श्लोक संख्या 10। जैसे गौ हत्या करने वाला ब्राह्मण तथा व्यभिचार कराने वाली स्त्री धार्मिक उपदेश करने से प्राचीन धर्मानुयायी मनुष्यों में आदरणीय नहीं है, वैसे ही मैंने प्रथम बहुत हिंसा की है, पर इस समय हिंसा दोष रहित होने पर भी मेरे वचन में विश्वास नहीं हो सकता, परंतु सचमुच मैं विश्वास पात्र हूँ। मया च धर्मशास्त्रानि अधीतानि श्रुणु, मैंने धर्मशास्त्र भी पढ़ा है, सुनो। मरुस्थल्याम यथा वृष्टि शुद्धार्थे भोजनम तथा दरिद्रे दीयते दानम सफलम पांडुनंदन। श्लोक संख्या 11। हे युधिष्ठिर, जैसे कि सुखी भूमि में वृष्टि सार्थक होती है, भूखे को भोजन देना सार्थक होता है, वैसे ही निर्धन को धन दान देना बहुत सार्थक है, ऐसा मानकर मैं दान देता हूँ, तुम ले लो। प्राणा यथात्मनो भ्रष्टा भूतानाम अपि ते तथा आत्मोपमेन भूतानाम दया कुर्वन्ति साधव। श्लोक संख्या 12। अपने प्राण जैसे अपने को प्यारे, वैसे ही सब जीवों को उनके प्राण प्यारे हैं, ऐसा समझकर साधु जन प्राणी मात्र के ऊपर दया रखते हैं। अपरंच प्रत्याख्याने च दाने च सुख दुखे प्रिया प्रिये आत्मोप्येन पुरुषः प्रमाणम् धिगच्छति। श्लोक संख्या 13। अपना अपमान होने से, दानादि लाभ होने से, प्रिय विषय में तथा अप्रिय विषय में जैसा अपने को सुख दुखादि का अनुभव होता है, वैसा ही सब जीवों को होता है, ऐसा समझकर सज्जन लोग सब जीवों के ऊपर दयापूर्वक व्यवहार करते हैं। अन्यंच मातृवत् परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठत्वत् आत्मवत सर्वभूतेषु यः पश्यन्ति स पंडिता। श्लोक संख्या 14। जिस पुरुष को पर स्त्रियों में अपनी माता के समान भावना हो तथा परधन में ठेले के समान न लेने की भावना हो तथा सब जीवों में आत्म समान दृष्टि हो, वही महापुरुष कहलाता है, अर्थात जितेंद्रिय निर्लोभी दयालु ही महापुरुष कहते हैं। त्वंच अतीव दुर्गता तेन तत तुभ्यम दातुम सयत्नोहम तथा चोक्तम, तुम बहुत करीब हो इसलिए सुवर्ण का दान तुम जैसे को देने के लिए मैं प्रयत्न कर रहा हूँ। शास्त्र में वैसे ही बताया गया है, दरिद्रान भर कौन्तेय मा प्रयच्छे स्वरे धनम व्याधितस्य औषधम पथ्यम निरुजस्य किम औषधे। श्लोक संख्या 15। हे युधिष्ठिर राजन, निर्धनों का पालन करो, धनी को धन देना निष्प्रयोजन होता है, कारण कि रोगी को औषध देना सफल होता है, निरोगी को देने से कोई लाभ नहीं है, इसलिए हे यात्रिन मैं तुझे देता हूँ। अन्यंच दातव्यमिति यद्दानं दीयते अनुपकारिणी देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं विदुः। श्लोक संख्या 16। जिसका बदला लेने की आशा न हो और देना ही ऐसा समझकर जो दान पवित्र देश काल में सतपात्र को दिया जाता है वही सात्विक दान शास्त्र में कहा गया है, इसलिए मैं तुमको बदले की आज्ञा बिना देता हूँ, ले लो। तदत्र सरसी स्नात्वा स्वर्ण कंकणमिदं गृहान ततो यावदशो तद्वचः प्रतीतो लोभात् सरस्नातुं प्रविष्टं तावनमः पंके निमग्नः पलायतुं अक्षमः तं पंके पतितं दृष्ट्वा व्याघो वदतः, अह महापंके पतितो असि अतस्त्वामहमुत्थाप्यामि इति उक्त्वा स्नेहरूप गम्य तेन व्याघ्रेण घृतः स पान्थो चिन्तयत्। तुमको ही देना है इसलिए तालाब में स्नान करके पवित्र होके स्वर्ण का कंगन ग्रहण करो। ऐसा सुनकर लोभ से व्याघ्र के वचन में विश्वास रखकर तालाब में स्नान करने को जैसे गया कि एकदम भारी कीचड़ में गड़ गया और भागने को असमर्थ हो गया। उस यात्री को कीचड़ में गड़ा हुआ देखकर व्याघ बोला, आहा तुम भारी कीचड़ में गड़ गए हो, मैं तुमको बाहर निकालता हूँ। व्याघ ने ऐसा कहकर धीरे से यात्री के पास जाकर यात्री को पकड़ लिया। तब यात्री विचार करने लगा कि न धर्म शास्त्रम पठती कारणम न चापि वेदाध्ययनम दुरात्मनः स्वभाव एवात्र तथा अतिरिच्यते यथा प्रकृतया मधुरम गवाम पयः। श्लोक संख्या 17। जैसे गौ का दूध स्वभाव से ही मधुर होता है, वैसे ही जो व्यक्ति स्वभाव से ही सत्वगुणी सत्पुरुष हो उसकी ही धर्म में प्रवृत्ति होती है, और जो स्वभाव से ही दुष्ट हो उसने चाहे कई धर्मशास्त्र और वेद का अध्ययन भले ही कर डाला हो तो भी उसकी दुष्टता तथा अधर्म आचरण दूर नहीं होते। इसलिए दुष्टात्मा व्याघ जैसे का शास्त्राध्ययन दूसरों को फंसाने के लिए ही है, धर्माचरणार्थ नहीं। किंच अवशेन्द्रिय चितानाम हस्तिना स्नानमेव क्रिया दुर्भगाभरण प्रायो ज्ञानम भार क्रियाम विना। श्लोक संख्या 18। जैसे हाथी स्नान करके फिर अपने शरीर को धूलि में मलिन कर लेता है इसलिए उसका स्नान करना व्यर्थ है, वैसे ही इंद्रियाधीन पुरुष संध्या यज्ञ आदि करके फिर पाप करता है इसलिए संध्या आदि करना निष्फल है, और इस हेतु से ही जैसे विधवा स्त्री की आभूषण धारणा करना भार रूप है, वैसे इंद्रियाधीन पुरुष का धर्माधिकार सब भार क्लेश रूप हो जाता है। तन्मया भद्रम न कृतम यदत्र मारात्मके विश्वास कृतः तथा चोक्तम, इसलिए मैंने वह अच्छा काम नहीं किया है जो कि इस हिंसक व्याघ में विश्वास किया। कहा भी है, नदीनाम शस्त्र पानीनाम नखिनाम श्रृंगिनाम तथा विश्वासो नैव कर्तव्य स्त्रीषु राजकुलेषु च। श्लोक संख्या 19। जिसका नियमित स्वभाव न हो जैसे कि नदियाँ शस्त्र वाले सिंह वाले नख वाले स्त्रियाँ और राजपुरुष, इनका विश्वास नहीं करना क्योंकि उनके अंतर की कोई एक स्थिति न होने से कभी वे महादुखी खाई में गिराते हैं। अपरच सर्वस्य ही परीक्षन्ते स्वभावो ने तेरे गुणा अतीत्या ही गुणान सर्वान स्वभावो मूर्धनी वर्तते। श्लोक संख्या 20। जाति स्वभाव ही सब सद्गुण और दुर्गुणों को ढाक कर प्रबल रहता है, इसलिए सभी के स्वभाव की ही परीक्षा की जाती है, न कि अन्य गुणों की। अन्यंच सहि गगन विहारी कलमंश ध्वंसकारी दशशत करधारी ज्योतिषाम मध्यचारी विदुरपि विधियोगाद अस्यते राहुनाशौ लिखितमपि ललाटे प्रोंझितुम कः समर्थः। श्लोक संख्या 21। आकाश में चलने वाला पापों का नाश करने वाला सूर्य और तारागणों के मध्य में रहने वाला चंद्रमा, वे दोनों दैवाधीन होकर राहु से ग्रस्त हो जाते हैं, इसलिए विधाता से ललाट में लिखा हुआ भाग्य कभी बदलता नहीं है। मार्ग में चलते कंगन के लोभ से व्याघ्र द्वारा मरना या तो कंगन पाना जो लिखा होगा सो हो जाएगा। इति चिन्तयन्नेवासौ व्याघ्रेण धृत्वा व्यापादिता खादिदश्च अतोऽहं ब्रवीमि कंगनश्च तु लोभेन इत्यादि अतैव सर्वथा विचारितं कर्मणा कर्तव्यमिति। ऐसा विचार करते हुए यात्री को व्याघ्र ने मार कर खा डाला, इसलिए मैंने कंगन के लोभ का दृष्टांत दिया। उसका सारांश यह है कि अपने को भी अविचारित काम नहीं करना चाहिए। यतः सुजीर्ण मनम सुविक्षणः सुतः सुशासिता स्त्रीः निपतिः सुसेवितः सुचिन्तया चोक्तम सुविचार्य यत्कृतम सुदीर्घकाले अपि न याति विक्रियाम। श्लोक संख्या 22। जैसे पचे हुए भोजन से कभी भी विकार नहीं होता है, सुशिक्षित पुत्र से दुख नहीं होता है, पति परायण स्त्री अधर्म नहीं करती है, प्रसन्न हुआ राजा हानिकारक नहीं होता है, निष्कपट बोलने से क्लेश नहीं होता है, वैसे ही विचार करके काम करने से भविष्य में कभी भी दुख नहीं होता है, इसलिए विचार करके चावल खाने के लिए जाना चाहिए। एतद् वचनं श्रुत्वा कश्चित् कपोतः सदर्पमा आह किमेव मुच्यते। वृद्ध कबूतर का वचन सुनकर कोई दूसरा कबूतर अहंकार के साथ बोल उठा, अह ऐसा उत्साह सुन क्यों बोलते हो, उसके बोलने का ख्याल मत करो, क्योंकि वृद्धस्य वचनम ग्राह्यमापत्ति काले ह्युपस्थिते सर्वत्रैवं विचारे च भोजने अपि पवर्तनम। श्लोक संख्या 23। बड़ी बड़ी आपत्ति आने पर वृद्ध पुरुषों के वचनों को मानकर कार्य करना चाहिए। अल्प कार्य में भी वृद्धों के वचनों को मानने लगे तो भोजन जैसा साधारण कार्य भी स्वतंत्रता से न हो सकेगा, इसलिए चावल खाने को जाना चाहिए। यतः शंका भी सर्वमाक्रांत मन्नम पानश्च भूतले प्रवृत्ति कुत्र कर्तव्या जीवितव्यम कथम नुवा। श्लोक संख्या 24। संसार में खान पान आदि सब पदार्थों में अनुकूल होने का संशय रहता ही है। शंका मात्र से प्रवृत्ति का निरोध करने से जीवन चलना भी दुर्लभ होगा। तथा चोक्तम ईश्वरी घृणी तव संतुष्ट क्रोधो नो नित्य शंकितः परभाग्योपजीवी च षडेति दुख भागिना। श्लोक संख्या 25। ईर्ष्या आदि सब दुख के कारण हैं। इस हेतु से ईर्ष्या वाला, घृणा करने वाला, तृष्णा करने वाला, क्रोध वाला, शंका वाला, पराधीन जीवन वाला मनुष्य दुख को ही पाता है, इससे निशंक होकर चावल खाने को जाना चाहिए। एतत् श्रुत्वा तंडूल कललोभेन नमो मंडलादर्वतीर्य सर्वे कपोतास्तत्रोपविष्टा। पूर्वोक्त वचन सुनकर चावल कड़ों के लोभ से आकाश में से नीचे उतरकर सब कबूतर जाल पर बैठ गए। यतः सुमहान्तेऽपि शास्त्राणि धारयन्तो बहुश्रुता क्षेत्तारा संशयानाश्च क्लिश्यन्ते लोभ मोहिता। श्लोक संख्या 26। वेद शास्त्रों को पढ़े हुए और हर तरह के संदेहों को दूर करने वाले पंडित लोग भी लोभ में दुख पाते हैं, तो चावल के लोभ भी इन पक्षियों को आपत्ति आने में क्या आश्चर्य। अन्यश्च लोभात क्रोधो प्रभवति लोभात कामः प्रजायते लोभान मोहश्च नाशश्च लोभो पापस्य कारणम्। श्लोक संख्या 27। लोभ से लोभनी वस्तु का प्रतिरोध करने वाले पर क्रोध होता है और लोभ से ही स्त्रियों के फंदे में फंस जाने से कामवासना पैदा होती है और लोभ से ही पापचरण करने वाले को सत्य असत्य का विचार भी नहीं सुझता। इससे कभी प्राण हानि भी हो जाती है। लोभ ही सब पापों का कारण है। अन्यश्च असंभवम हेम मृगस्य जन्म तथापि रामो लोभे मृगाय प्रायः समापन्न विपत्ति काले धियो अपि पुंसाम मलीना भवन्ति। श्लोक संख्या 28। सुवर्ण का हरण हो ही नहीं सकता है तो भी श्री रामचंद्र भगवान स्वर्ण मृग में भी लुप्त हो गए। इस दृष्टांत से निश्चय होता है कि विपत्ति आने के समय में बड़े पुरुषों की बुद्धि भी मलिन अर्थात विचार शून्य हो जाती है, तो कबूतरों की बुद्धि के लिए क्या कहना। अनंतरम ते सर्वे जाल निबद्धा बुभुः ततो यस्वचनात् तत्रावलंबितास्तम सर्वे तिरस्व कुर्वन्ति स्म। बैठने के बाद वे सब कबूतर जाल में बंध गए। तब जिस कबूतर के कहने से वे सब कबूतर जाल युक्त भूतल में उतरे थे उस कबूतर का तिरस्कार करने लगे। यतः नागणस्यागर्तो गच्छेत सिद्धे कार्य सम्मम फलम यदि कार्य विपत्ति स्यान मुखरस तत्र हन्यते। श्लोक संख्या 29। किसी भी कार्य में समुदाय का नेता नहीं होना, क्योंकि कार्य सिद्धि होने पर सब समान फल भागी बनते हैं और कार्य सिद्धि नहीं होने से नेता को ही अपयश का तिरस्कार का पात्र बनाते हैं। तस्य तिरस्कारम श्रुत्वा चित्रगीव उवाच नायम्यस्य दोषः यतः। प्रवर्तक कबूतर के तिरस्कार को सुनकर चित्रगीव ने कहा इस प्रवर्तक कबूतर का यह दोष नहीं, क्योंकि आपदामां पतंतीनां हितो अपि आयाति हेतुतां मातृजंघां हि वतस्य तं भी भवति बंधने। श्लोक संख्या 30। सदा हित करने वाले जन भी अवश्य आने वाली आपत्तियों में निमित्त भूत हो जाते हैं, क्योंकि गौ की जांग कमी बछड़े का बंधन स्तंभ रूप भी होती है, इसलिए यह कबूतर निर्दोष है। अन्यश्च सबंधुर्यो विपन्ना नामा पद्दुर्रण क्षमः न तो भीतर परित्राण वस्तु पालंभ पंडितः। श्लोक संख्या 31। जो पुरुष विपत्तियों से बचाता है वही बंधु है। विपत्तियों के आने पर रक्षण नहीं करके केवल तिरस्कार करने में कुशल जो पुरुष है वह बंधु नहीं है। विपत्ति काले विस्मय एव का पुरुष लक्षणम तदत्र धैर्यमवलंबये प्रतिकारश्चिन्तयताम। यतः आपत्ति काल में व्याकुल होना ही हल्के पुरुषों का लक्षण है, इसलिए धीरज रख कर इस जाल बंधन से छूटने का उपाय खोजो, क्योंकि विपदि धैर्यमथाभ्युदय क्षमा सदसी वाक्य पटुता युधि विक्रमः यशसी चाभिरुचि वर्यशनम श्रुतौ प्रकृति सिद्धमिदम ही महात्मनाम। श्लोक संख्या 32। आपत्काल में धीरता रखना, समर्थ होने पर भी क्षमा रखना, सभा में बोलने में चतुर होना, युद्ध में शूरवीर होना, कृति में रुचि होना, शास्त्रों में प्रेम होना, महापुरुषों के ये सब स्वभाव जन्म सिद्ध होते हैं। संपदि यश न हर्षो विपदि विषादो रणे च भीरुत्वम तम भुवन त्रय तिलकम जन्यति जननी सुतम विरलम। श्लोक संख्या 33। संपत्ति का लाभ होने पर जिसको हर्ष नहीं है, विपत्ति आने पर जिसको शोक नहीं है और युद्ध के मौके पर जिसको कुछ भी भय नहीं है, ऐसे गुणों से युक्त त्रिलोक पूज्य पुत्र को कभी कोई माता जन्म देती है। अन्यश्च षड्दोषः पुरुषेण हात्वया भूतमिच्छता तिद्रा तंद्रा भयं क्रोधः आलस्यं दीर्घसूत्रता। श्लोक संख्या 34। इस संसार में अबुद्धे के इच्छा वाले लोग निद्रा तंद्रा भय क्रोध आलस्य दीर्घसूत्रता इन छह दोषों का त्याग करें। इदानीमपि एव क्रियताम सर्वैरेक चित्ति भूय जालमादाय उड्डीयताम। अब भी ऐसा करो कि हम सब एक चित्त होकर जाल को लेकर उड़ चले। यतः अल्पानामपि वस्तुनाम सहति कार्य साधिका त्रिणय गुणत्वमापन्ने वर्ध्यन्ते मददन्तिनः। श्लोक संख्या 35। जैसे बहुत तीड़ों की बनाई हुई रस्सी मदोमत्त हाथी को बांधती है, वैसे ही निर्बल तथा शुद्र चीजें भी मिलकर बड़े कार्य को सिद्ध करती हैं। संहति श्रेयसी पुंसाम सवकुलेरल्प कैरपि तुषेणापि परितक्यता न परोहन्ति तंडुला। श्लोक संख्या 36। मनुष्यों को अपने घोड़े और निर्बल भी कुटुम्बी जनों से मेल रखना ही अच्छा है, क्योंकि चावल भी अपने छिलकों से अलग होने पर अंकुर को पैदा नहीं कर सकता। इति विचिन्त्यत् पक्षिणा सर्वे जाल मादाया उत्पत्तितानन्तरं सा व्याघा सुदुराज्जालापहार कास्तान अवलोक्य पश्चाद्धावितो चिंतयत्। ऐसी सलाह करके सब कबूतर जाल को लेकर उड़ गए। तब वह व्याघ जाल लेकर जाते हुए कबूतरों को देखकर दूर तक पीछे पीछे दौड़ता हुआ विचारने लगा। संहतास्तु हरन्ते एते मम जालम विहंगमा यदा तु निपत्तिष्यन्ति वशमेष्यन्ति मे तदा। श्लोक संख्या 37। ये सब कबूतर मिलकर मेरे जाल को ले जा रहे हैं, लेकिन जब पृथ्वी पर उतरेंगे तब अवश्य मेरे हाथ आ जाएंगे। ततस्तेषु चक्षुर विषयमति क्रांतेषु पक्षिषु च व्याघो निवृत्तः अथ लुबद्धकम् निवृत्तम् दृष्ट्वा कपोतो उचु स्वामीन किमिदानीम् कर्तुमुचितम् चित्रग्रीव उवाच। लेकिन जब वे कबूतर अदृश्य हो गए तब व्याघ घर लौट गया। उसके बाद व्याघ को लौटे हुए देखकर सब कबूतरों ने वृद्ध कबूतर से पूछा, स्वामीन अब क्या करना चाहिए? चित्रग्रीव ने जवाब दिया, माता मित्रम पिता चैति स्वभावात तृतयम हितम कार्य कारण चान्ये भवन्ति हित बुद्धयः। श्लोक संख्या 38। माता मित्र और पिता ये तीनों स्वभाव से ही हित करने वाले होते हैं और दूसरे तो कार्य कारण रूपी स्वार्थ के लिए हितकारी बन जाते हैं। तन्मे मित्रम हिरण्यको नाम मूषिक राजो गडकी तीरे चित्रवने निवसति सोऽस्माकं पाशांश्छेस्यति इत्यालोच्य सर्वे हिरण्यक विवरश्यमीपं गता हिरण्यकश्च सर्वदा अपाय शंकाया शतद्वारं विवरं कृत्वा निवसति। इसलिए मेरा मित्र हिरण्यक नाम का चूहो का राजा गड्डकी नदी के किनारे चित्रवन में रहता है, वह हम लोगों के बंधनों को काटेगा। ऐसा विचार करके सब कबूतर हिरण्यक के निवास स्थान पर गए। हिरण्यक भी सदा विघ्नों की शंका से सैकड़ों मुख का बिल बनाकर रहता है। ततो हिरण्यक कपोतावपात भयाश्चकितः तुष्णीम् स्थितः चित्रगीव उवाच, सखे हिरण्यक कथमस्मान्न संभासे। ततो हिरण्यकस् तद्वचनम् प्रत्यभिज्ञात् सा संभ्रमम् ब्रहिणीरसुत्य अब्रवीत्, आह पुण्यमानस्मि प्रिय सुहिन्मे चित्रग्रीवा समायातः। बिल पर कबूतरों के जाने के बाद कबूतरों के उतरने की आवाज से भयभीत होकर वह हिरण्यक चुपचाप हो रहा। तब चित्रगीव बोला, मित्र हिरण्यक इससे क्यों नहीं बोलते हो? हिरण्यक अपने मित्र के उस वचन को पहचान कर बड़े आनंद उत्साह के साथ बाहर आया और बोला, ओहो मेरा पुण्योदय हुआ, क्योंकि आज मेरे प्रिय मित्र चित्रगीव आए हैं। यस्य मित्रेण संभासो यस्य मित्रेण संस्थिति यस्य मित्रेण संलापस्ततो नास्ति ह पुण्यवान। श्लोक संख्या 39। जिसका मित्र के साथ संभाषण होता है, जिसका मित्र के साथ रहना होता है तथा जिसका मित्र के साथ रहस्य विचार होता है, उस पुरुष के समान पुण्यशाली दूसरा कोई नहीं है। अथ पासबंधास चैतान दृष्ट्वा संविस्मयः क्षणम् स्थित्वा उवाच, सखे किमेतत्। चित्रग्रीव उवाच, सखे अस्माकं प्राक्तन जन्म कर्मणः फलमेतत्। बाहर आने के बाद जाल से बंधे हुए सब कबूतरों को देखकर आश्चर्य के साथ क्षण मात्र स्तब्ध होके हिरण्यक बोला, मित्र चित्रगीव यह बंधन कैसा हुआ? चित्रगीव ने कहा, मित्र हिरण्यक यह बंधन हमारे पूर्व जन्म कृत पापों के फल स्वरूप उपस्थित हुआ है। यस्माच् येन च यथा च यदा च यच् यावच् यत्र च शुभाशुभ ममात् कर्म तस्माच् तेन च तथा च तदा च तच्च तावच् तत्र च विधात्री वशादु पेति। श्लोक संख्या 40। जिस कारण से जिस प्रकार से जिस काल में जैसा जितना छोटा बड़ा जहाँ जहाँ जो जो शुभ व अशुभ कर्म फल भोगना लिखा होता है, भाग्यवश से उस कारण से, उस करण से, उसी प्रकार से, उसी समय में, वैसा ही छोटा या बड़ा उसी स्थल में वह शुभाशुभ कर्म फल स्वरूप में परिणत होके उपस्थित हो जाता है। रोग शोक परिताप बंधन वैवसानी च आत्मा अपराध भिक्षानाम फलाने तानि देहि नाम। श्लोक संख्या 41। रोग शोक वेदना बंधन व्यसन आदि आपत्तियां जो शरीरधारियों को होती हैं, वे सब अपने किए दुष्ट कर्म रूप वृक्ष के फल हैं। एतत् श्रुत्वा हिरण्यकः अर्थात स मुस्कः चित्रग्रीवस्य बंधनम शेतुम सतरप मू सर्पति तत्र चित्रग्रीव उवाच मित्र मामेव कुरु प्रथमम स्मादाश्रितानाम इतेषाम तावत् पासाक्षिन्धी मम पासम पश्चाक्षे तस्यसि हिरण्यकोप्याः अहम् अल्पशक्तिः दंचास्तमे कोमिला तदितेषां पासाक्षेतुं कथं समर्थो भवामि तत्यानमे दंता न त्रुटयन्ति तावत् तव पाशं छिन्नधि तदनन्तरं मे तेषां बन्धनं यावत् शक्यं छेत्स्यामि चित्रग्रीव उवाच असत्त्वेवं तथापि यथाशक्ति बन्धनं तेषां खण्डेय हिरण्येक उक्तवम् आत्मपरित्यागेन यदाश्रितानां परिरक्षणं तन्न नीतिवेदिनां सममतम्। यह सुनकर हिरण्यक नाम का चूहा चित्रग्रीव नामक कपोत्र राज के बंधन को काटने के लिए सिरगता से जाता है। इतने में चित्रग्रीव ने कहा मित्र ऐसा मत करो, प्रथम हमारे आश्रित इन सब कबूतरों के बंधन काटो, पीछे मेरा बंधन काटना। तब हिरण्यक ने कहा मैं अल्प शक्ति वाला हूँ और मेरे दांत निर्बल हैं, इसलिए इन सब के बंधनों को कैसे काट सकूंगा, तो भी जब तक मेरे दांत नहीं टूटेंगे तब तक तुम्हारे अर्थात चित्रग्रीव के बंधन को काट डालूं, उसके बाद सबके बंधनों को जहाँ तक बन सकेगा काटूंगा। तब चित्रग्रीव ने कहा अच्छा वैसे ही सही, तो भी जहाँ तक बन सके इन सबके बंधनों को पहले काटो। तब हिरण्यक ने कहा अपने को छोड़कर आश्रितों का रक्षण करना यह नीतिज्ञों का सम्मत नहीं है। यतः आपर्धे धनम रक्षेत दारण रक्षेत धनेरपि आत्मानं सततम् रक्षेत तारेरपि धनेरपि। श्लोक संख्या 42। दुर्भिक्ष आदि आपत्तियां दूर करने के लिए धन का संग्रह करना और धन को भी छोड़कर विपत्ति में पड़ी हुई स्त्री की रक्षा करना और स्त्री तथा धन दोनों को छोड़कर भी आपत्तिग्रस्त अपनी अर्थात आत्मा की रक्षा करनी चाहिए। अन्यश्च धर्मार्थ काम मोक्षानाम प्राण संस्थिति हेत्वः तान निर्घंता किन्न हतम रक्षता किम्न रक्षितम। श्लोक संख्या 43। प्राण ही धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों के कारण हैं, इसलिए प्राण के नाश करने वालों ने क्या नाश नहीं किया अर्थात सब कुछ नाश किया, और प्राण अर्थात जीवन का रक्षण करने वालों ने किस चीज का रक्षण नहीं किया अर्थात सबका रक्षण किया है। चित्रग्रीव उवाच सखे नीतिस्तावत इदृश्येव किन्त्वाहं स्मदाश्रितानां दुःखं शोढुं सर्वथा समर्थस्तेनेदं ब्रवीमि। चित्रग्रीव बोला मित्र हिरण्यक नीति तो तुमने कही वैसी ही है, लेकिन क्या करूं, अपने अनुजीवियों के कष्ट को सहन करने के लिए मैं सर्वथा असमर्थ हूं, इसलिए ऐसा बोल रहा हूं। यतः धनानि जीवितञ्चैव परार्थे प्राज्ञोत्सृजेत सन्निमित्ते वरं त्यागो विनाशे नियते सति। श्लोक संख्या 44। बुद्धिमान मनुष्य परोपकार में ही अपने धन तथा जीवन का उपयोग करे, क्योंकि धन तथा जीवन का नाश कभी न कभी जरूर होगा, इससे सत्कार्य में लगाना अच्छा है। अयम पराश्चा साधारणो हेतु यह भी एक दूसरा मुख्य कारण है। जाति द्रव्य बलानांच साम्यमेषां मया स मत प्रभुत्व फलं ब्रूहि कदा किं तद् भविष्यति। श्लोक संख्या 45। मेरे साथ इन सब के जाति संपत बल ये सब बराबर हैं, मेरे में इन सब का आधिपत्य ही अधिक है। अब कहिए अगर मैं इनका इस वक्त रक्षण न करूं तो दूसरा आधिपत्य का कौन सा फल होगा, अर्थात कोई नहीं। अन्यश्च विनावर्तनमेव वैते न तज्यन्ति ममान्तिकं तन्मे प्राणवयेयानपि जीवयेत्तान् ममाश्रितान्। श्लोक संख्या 46। ये सब कबूतर वेतन नहीं लेते तो भी मेरा साथ नहीं छोड़ते हैं, इसलिए मेरे जीवन के बदले से भी मेरे आश्रित इन सब की रक्षा करो। किंच मांस मूत्र पुरी शास्थि पुरितेत्र कलेवरे विनश्वरे विहाय स्थायाम यशा पालाय मित्र में। श्लोक संख्या 47। हे मित्र, मांस मूत्र मल हड्डियां इन सब से भरे हुए इस क्षणिक शरीर में ममता का त्याग कर मेरे शरणागत रक्षण रूप यश का रक्षण करो। अपरंच पश्य यदि नित्यम नित्येन निर्मलम मलवाहिना यशकायन लभ्येत तन्न लब्धम भवेननु किम्। श्लोक संख्या 48। अगर अनित्य तथा मलवाही अशुद्ध शरीर से नित्य और विशुद्ध यश मिले तो क्या नहीं मिला, अर्थात सब कुछ मिला। यतः शरीरस्य गुणानांच दुर्मत्यन्तमनन्तरं शरीरं षड्विध्वंसी कल्पान्तस्थायिनो गुणः। श्लोक संख्या 49। शरीर और गुणों में महान विभेद है, क्योंकि शरीर तो अकस्मात क्षण मात्र में नष्ट होने योग्य है और धर्मादि गुण तो महाकल्प पर्यंत स्थिर रहने वाले हैं। इत्याकर्ण्य हिरण्यकः प्रदिष्ट मना पुलकितासन अब्रवीत साधु मित्रः साधु अनेनाश्रित वात्सल्येन त्रैलोक्यस्यापि प्रभुत्वं तवै युज्यते एव मुक्त्वा तेन सर्वेषां कपोतानां बन्धनानि छिन्नानि ततो हिरण्यकः सर्वान् सादरं सम्पूज्य आह सखे चित्रगीव सर्वथात्र जालबन्धन विधौ सति दोषमाशंक्य आत्मनि अवज्ञा न कर्तव्या। चित्रगीव का वचन सुनकर हिरण्यक आनंदित और पुलकित होकर बोला, हे मित्र चित्रगीव, तुमने ठीक कहा। आश्रितों पर इस प्रकार के वात्सल्य से तुम्हारे में त्रिलोकी के प्रभुत्व की योग्यता है। ऐसा कहकर उस हिरण्यक ने सब कबूतरों के बंधनों को काट डाला। उसके बाद हिरण्यक आदर पूर्वक सब कबूतरों की पूजा करके बोला, मित्र चित्रगीव, इस जाल के बंधन में अपने अविचारकारिता रूप अपराध को मानकर आत्मा के प्रति तिरस्कार बुद्धि नहीं करना। यतः यो अधिकाद योजन सतात पश्यति हामिशम खगः स एव प्राप्तकालस्तु पाशबन्धनम् न पश्यति। श्लोक संख्या 50। इस जगत में शेन अर्थात बाज पक्षी 100 योजन पर की दूरी से भी भक्ष्य पदार्थ मांस आदि को देखता है, किंतु जब उसकी मृत्यु निकट आती है तब वह सामने स्थित जाल को भी नहीं देख सकता। अपरच शशि दिवाकर यो ग्रह पिंडनम गज भुजंग मयोरपि बंधनम मतिमाश्च विलोक्य दरिताम विधि रहो बलवानिति मे मति। श्लोक संख्या 51। चंद्र तथा सूर्य को भी ग्रह अर्थात राहु कृत पीड़ा देखकर हाथी तथा सांप को श्रृंगला तथा मंत्रों से बंधन देखकर और विद्वान होने पर भी दरिद्रता देखकर मुझे निश्चय होता है कि सबका प्राबद्ध अर्थात भाग्य बलवान है। अनेश्य व्योमे कांत विहारिनो अपि विहगा संप्राप्यनुवंताया पदम बंध्यते निपुणे रगाध्या शलीलान मत्स्याः समुद्रादपि दुर्नितम किमिहास्ति किम सुचरितम सुचरितम कह स्थान लाभे गुणः कालो ही व्यसन प्रसारित करो गृहनाति दुरादपि। श्लोक संख्या 52। केवल आकाश में विहार करने वाले निरपराध पक्षी भी आपत्तियों को पाते हैं। धीवर लोग अगाध समुद्र से भी निरपराध मत्स्यों को पकड़ लेते हैं, तो फिर इस जगत में क्या सुनीति और क्या दुर्नीति, दोनों में कुछ भेद मालूम नहीं पड़ता और उत्तम स्थान मिलने पर भी क्या लाभ है, क्योंकि काल अर्थात मृत्यु विपत्ति रूप हाथों को फैलाकर दूर से ही सबको पकड़ लेता है। इति प्रबोध्य आतिथ्यम कृत्वा आलिंग्य च तेन संप्रेष्य चित्रग्रीवोऽपि सपरिवारो यथेष्ट देशान ययो हिरण्यकोऽपि सविवरं प्रविष्ट। हिरण्यक ने ऐसी सांत्वना देकर और अतिथि सत्कार करके आलिंगन कर चित्रग्रीव को विदा किया। चित्रग्रीव अपने परिवार के साथ अच्छे देशों के प्रति गया। हिरण्यक भी अपने बिल में घुस गया। यानि कानि च मित्राणि कर्तव्यानि सतानि च पश्य मूषिका मित्रेण कपोता मुक्त बंधना। श्लोक संख्या 53। छोटे या बड़े बहुत से मित्र करने चाहिए, क्योंकि देखिए सब कबूतर चूहा रूप मित्र से भी बंधन से मुक्त हो गए। अथ लघुपतनक नामक काकः सर्ववृत्तांत दर्शी साश्चर्यम् इदमाह अहोहिन्यकः श्लाघयोऽसि ततो अहमपि तव्यास मैत्रीं कर्तुमिच्छामि अतस्त्वं माम् मैत्रेया अनुगृहीतुम् अर्हसि। एतच्छ्रुत्वा हिरण्यकोऽपि विवराभ्यन्तरादः कस्त्वं सब्रूते लघुपतनक नाम वायसोऽहम् हिरण्यको विहस्याः कातव्या स मैत्री। उसके बाद सब वितरांत को देखने वाला लघुपतनक नामक कौवा आश्चर्य पूर्वक इस प्रकार बोला, हे मित्र हिरण्यक, तुम प्रशंसा के योग्य अर्थात श्रेष्ठ व्यक्ति हो, इसलिए मैं भी तुमसे मैत्री करना चाहता हूँ। मित्रता से मुझको अनुग्रहित करो। हिरण्यक भी ऐसा सुनकर बिल के भीतर से ही बोला, तू कौन है? काक बोला, मैं लघु पतनक नाम का कौवा हूँ। तब हिरण्यक हंसकर बोला, तुम्हारे साथ मित्रता कैसी? यतः यदयेन युज्यते लोके बुधस्तत्तेन योजेत अमन्नम भवान भोक्ता कथम प्रीतिर भविष्यति। श्लोक संख्या 54। संसार में जो जिसके साथ जोड़ने योग्य होता है, बुद्धिमान जन उसी के साथ उसको जोड़ता है। मैं अर्थात चूहा तेरा अर्थात काक का खाद्य अर्थात भोजन हूँ, और तू अर्थात काक मुझको अर्थात चूहे को खाने वाला है, तब कैसी प्रीति हो सकती है? अर्थात नहीं हो सकती। अपरश्च भक्ष्यम भक्षकयो प्रीतिर विपत्ते कारणम मतम शिंगालात पासबंधोशो मृगा काकेन रक्षिता। श्लोक संख्या 55। भक्ष और भक्षक इन दोनों की प्रीति विपत्ति में हेतु बन जाती है। जैसे मित्र शिंगाल द्वारा जाल में फंसाए गए मृग को कौवों ने बचाया। वायशो ब्रवीत कथमेतत् हिरण्यका कथ्यति। लघु पतनक नाम का कौवा बोला, श्रृंगाल द्वारा फंसाए गए मृग को काक ने मुक्त किया, यह कथा किस प्रकार है? हिरण्यक कहता है,